और अर्जुन का धनुष जो दिखाते हैं उसको गांडीव कहते हैं, उसको बेहद नहीं किसे समझे, उसकी बड़ा घायल है।
जैसे शंखों के नाम दिए हुए हैं, क्या शंख नाम दिए हुए हैं, ढेर सारे शंख हैं। महाभारत युद्ध हुआ तो अलग अलग प्रकार के नाम दिए हैं शंखों के। इस महारथी ने ये शंख बजाया, उस महारथी ने वो शंख बजाया। तो शंख तो ये मुख है, जो गीता में शंख की बात आई है ये मुख ही शंख है। तो किसी के मुख से जबरदस्त आवाज निकलती है, जबरदस्त का मतलब लाउड स्पीकर नहीं, ऐसी आवाज जो सारी दुनिया में बजड़ी जल्दी फैल जाए। कोई की आवाज इतना फैलने वाली नहीं होती है, तो कोई की आवाज अति भयंकर, कोई की आवाज अति मीठी। तो उस आधार पर शंखों के नाम रखे हुए हैं। ऐसे ही ये धनुष का नाम रखा है, क्या? गांडीव। तो धनुष क्या है? शरीर रूपी धनुष। ये जो धनुष है जिससे पुरुषार्थ होता है, पुरुषार्थ कैसे होता है? पूरे शरीर से पुरुषार्थ होता है कि शरीर के कोई अंग से, एक अंग से पुरुषार्थ होता है? पूरे शरीर से पुरुषार्थ। मान लो हीरो पार्टधारी का शरीर है तो वो एक अंग से ही सेवा करता होगा या शरीर के हर अंग से सेवा होती है? हैं? हर अंग से। हीरो पार्टधारी की पार्टधारी है तो पार्ट तो बजाता होगा ना, जो पार्ट बजाता होगा वो पार्ट बजाने वाली आत्मा उसमें कौन सी है? शिव। शिव नाम क्यों पड़ा? कल्याणकारी। क्या कल्याणकारी? माना उस शरीर के जिस अंग से भी पार्ट बजाएगा उसका रिजल्ट क्या आएगा? आखिरी जो रिजल्ट आएगा वो कल्याणकारी रिजल्ट ही आएगा, कल्याणकारी रिजल्ट नहीं आएगा। पांव की उंगली के, छोटी सी उंगली के अंश मात्र से जो पार्ट बजाएगा वो पार्ट भी मनुष्य आत्माओं को याद आएगा, आ सकता है या नहीं याद आ सकता है? याद आ सकता है। और वो याद जो आएगी वो कल्याणकारी होगी या अकल्याणकारी होगी? अंततः रिजल्ट में कल्याणकारी। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ऊंचते ऊंचे आत्मा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वालों में से। तो जो ऊंचते ऊंचे है वो पार्ट भी कैसा बजाएगी? ऊंचते ऊंच पार्ट बजाती। वो ऊंचते ऊंच जो पार्ट तभी कहा जाएगा जबकि उसका रिजल्ट भी ऊंचे से ऊंचा हो। तो गांडीव का अर्थ समझे हैं? हाँ। और
भाई एक माता है, एक माता है भाई, ऐसे हाँ? वो रह जाती है माताएं के लिए।
शक्तियों का बहुत वफादार आदमी है। ऐसा वफादार आदमी हमने कभी देखा नहीं। बाबा पार्शलिटी करता है, बाबा अपने हमजिंस की तरफ ज्यादा इशारा करता है। भाई भाई देखता है कि बाबा ज्यादातर मुख जो है भाइयों की तरफ किए रहते हैं। लेकिन वो बेचारा नहीं जानता कि बाबा का वाइब्रेशन किधर जाता होगा। ये भी तो हो सकता है, वो ध्यान में नहीं आता। अच्छा और हाँ,
एक मुरली में बाबा ने बोला है कि दो सागर
है।
एक मुरली में बाबा ने कहा सागर दो है, एक है ज्ञान सागर और दूसरा है विषय सागर।
हाँ।
तो बाबा ज्ञान सागर तो क्लियर है लेकिन विषय सागर चैतन्य पाठधारी कोई होगा ना?
अरे
तो
दुनिया में जो सतयुग त्रेता में सागर था वो बदलने की कोई दूसरा होता है? ऊपर से कोई दूसरा सागर उतरता है क्या? उतरता है, है? सागर तो वो एक ही है, है? जो एक ही सागर है वही सागर वही आत्मा द्वापर से लेकर के नीचे गिरना शुरू होती है कि नहीं है? नीचे गिरना शुरू होती है, लेकिन नीचे गिरने वालों में भी ऊंचे पार्टधारी है या नीचे पार्टधारी है? इसलिए एक मुरली में बोला है स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? माना वो स्वर्ग की दुनिया का भी हीरो पार्टधारी है और नरक की दुनिया का भी हीरो पार्टधारी है। ड्रामा कहो नाटक कहो उसके चार भाग होते हैं मोस्टली, क्या? पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा, चौथा सीन होता है। तो चौथे सीन में भी हीरो पार्टधारी का पार्ट बजाएगा या सामान्य पार्ट बजाएगा? हीरो पार्टधारी। और
बाबा महाभारत में जब सूर्य अस्त होता था तो युद्ध समाप्त हो जाता था, जैसे सूर्य उदय होता था तो युद्ध शुरू हो जाता था, तो ये ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे लागू होता?
कमाल है, सूर्य उदय कब कहेंगे, कौन से युग में?
क्षेत्र।
और सूर्य का अस्त कब से होना शुरू होता है और रात कब कहेंगे? घोर अंधेरी रात कब कहेंगे? चार युगों में वो टाइम बताओ, या चारों युगों की शूटिंग भी तो रिहर्सल भी तो होती होगी, रिकॉर्डिंग नहीं होती है? जब ड्रामा है नाटक है ये दुनिया, तो उस नाटक में जो हीरो पार्टधारी है वो चारों सीन में पार्ट बजाता होगा ना, सारी दुनिया का पार्ट नुदा हुआ है अपना अपना, हर एक आत्मा में जो पार्ट नुदा हुआ है वो पार्ट बजाती है टाइम टू टाइम। तो घोर अंधेरी रात कब होती है और घोर सोझरा कब होता है? अभी क्या चल रही है? अभी रात घोर अंधेरी चल रही है, अंधेरा गहराता जा रहा है कि कम होता जा रहा है? है गहराता जा रहा है। जिनके पास पैसा है वो सोचते हैं कहाँ पैसा डालें, बैंकें फेल हो जाती। अच्छा सोना इकट्ठा कर लें पैसे का, है? उसी कीमत एकदम कभी डाउन हो जाती, कभी एकदम ऊपर अप हो जाती, फिर चोर चकार हम छुपा के भी रखे हैं तो चोर निकाल ले जाते हैं, चलो चोरों से भी बच जाए,
गवर्नमेंट ले जाएगी,
जमीन में गाड़ेंगे गवर्नमेंट मशीनें ले आके, जमीन में कहाँ क्या गड़ा हुआ है, कितना गहरा गड़ा हुआ है वो सब निकाल ले जाएगी। तो किसी की बुद्धि काम नाम को काम नहीं कर रही है, करें तो क्या करें? अंधे है ना, अंधे हैं या सोझरे हैं? अंधे हैं। और ये अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है, कोई रोशनी दिखाने वाला नहीं कि सर्च लाइट ले और टार्च दिखा दे, ज्ञान की रोशनी दिखाए कि भाई इस रास्ते पे चलो तो ठिकाने पे पहुंच जाओगे, सिवाय एक परमपिता परमात्मा के। लेकिन वो परमपिता परमात्मा इस संगमी की दुनिया में है या नहीं है?
है,
है तो अंधेरा क्यों है?
अनिश्चय बुद्धि होते रहते।
अरे क्यों अनिश्चय बुद्धि होते रहते, जब है तो है, तो है, नहीं है तो नहीं है। अरे दुनिया के आधे आधे दो हिस्से कर दिए जाए, एक भारत की साइड और एक अमेरिका की साइड, क्या भारत की साइड और एक अमेरिका की साइड। तो भारत में जब सूर्य चमकता है तो उजेला है, और वही सूर्य डूबने के बाद अमेरिका की तरफ चला जाता है तो रात हो जाती है ना। यहाँ रात हो जाती है और वहाँ उजेला हो जाता है। ऐसे ही है ज्ञान सूर्य भारत भगवान जब इस सृष्टि पर आता है, प्रत्यक्ष होता है, तो एकदम रात के 12 बजे प्रत्यक्ष हो जाता है भारत में, कि धीरे धीरे प्रत्यक्ष होता है, धीरे धीरे प्रत्यक्ष होता है, लेकिन दिखाई देता है नहीं। तो ऐसे ही रात्रि के 12 बजे है 76 में, क्या 76 से वो ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होना शुरू हुआ। ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष हुआ कि राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष हुई है? न राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष हुई, न ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष हुआ। अरे आज के साहूकार अभी जो मिसाल दिया ना, अंधेरे में है तो सभी अंधेरे में एक मिसाल दिया, तो अंधेरे में हमेशा रहते हैं कि कभी बड़े जोश में आ जाते हैं? अरे ये बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना के खड़ी कर दो, ढेर पैसा हो जाएगा, हम करोड़पति अव्वल नंबर बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे, तो कभी उमंग उत्साह में भी आते हैं कि नहीं है? तेज चाल दौड़ते हैं कि नहीं, चढ़ते उड़ते हैं कि नहीं, हवा में उड़ते हैं। तो ऐसे ही कभी निश्चय बुद्धि, कभी एकदम ठप अनिश्चय बुद्धि। तो अंधेरा कहेंगे या उजेला कहेंगे? उजेला है तो हमेशा उजेला है, और अंधेरा है तो अंधेरा ही अंधेरा है। तो ऐसे ही है जब ज्ञान सूर्य नॉर्थ इंडिया में चमकता है तो नॉर्थ इंडिया वाले सोजरे में होंगे या नहीं होंगे? हैं? नॉर्थ इंडिया वाले सोजरे में होंगे। तो ज्ञान सूर्य भी जब नॉर्थ इंडिया में चमकना शुरू होता है या पूरा पूरा रात दोपहर के 12 बजते हैं, पंजाब साइड में पूरी ही रोशनी पड़ती है दोपहर के 12 बजे, तो कौन जग जाते हैं? जब वो जग जाते हैं तो इंडिया की विजय हो जाती है। कौन जग जाते हैं? ऐसे लोग जग जाते हैं। अभी इतना ज्ञान फैल रहा है चंडीगढ़ में, मानसा में, जगराओं में,
सभी जगह फैल रहा है।
फैल तो रहा है, लेकिन सरदार लोग तो दिखाई नहीं पड़ते हैं। जाग रहे? नहीं जाग रहे, तो एक कथा बना दी है, चिढ़ाते हैं हिंदू लोग, सरदार जी अभी 12 नहीं बजे हैं, ऐसे 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 चढ़ाते हैं कि नहीं। तो वो दुनिया में जो भी बातें होती हैं उनका कोई न कोई आधार होता है, अर्थ होता है। तो ये यहीं की बात है, अभी नॉर्थ इंडिया में भारत में भगवान पूरी रीति प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, इसीलिए राम का जन्म जो है दोपहर को 12 बजे मनाते हैं भक्ति मार्ग में, कृष्ण का जन्म रात्रि के 12 बजे मनाते हैं। तो कृष्ण का जन्म अभी वास्तव में नहीं हुआ है, माने कृष्ण वाली आत्मा संपूर्ण 16 कला संपूर्ण पूर्णमासी पूर्ण का चंद्रमा नहीं बना है, अब बनने वाला है, बन जाएगा। जब बन जाएगा तो कृष्ण जन्माष्टमी हो जाएगी। क्या कहते हैं, बाप की जन्म के साथ बच्चे का भी जन्म हो जाए, मना राम बाप भी पूरा पूरा प्रत्यक्ष हो जाएगा, और राम बाप का जो बच्चा है कृष्ण, चित्रों में देखा होगा कि शंकर जी बैठे हुए हैं और गोद में उनके कृष्ण बच्चा बैठा हुआ, ये चित्र कहाँ की यादगार है? चरित्र की यादगार है। तो इस समय वो शंकर जो पार्टधारी है वो कृष्ण वाली आत्मा को बच्चा बना के सर माथे पर खिला रहा है, और वो बच्चा अभी बच्चा बुद्धि है। जब सालिम बुद्धि हो जाएगा, क्या सगीर बुद्धि हो जाएगा, तो फिर प्रत्यक्ष हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। अभी गर्भ में है, गर्भ में बच्चा अकल होगी या नहीं, बेअकल होगा, बेअकल होता है। तो ऐसे ही है, अभी नॉर्थ इंडिया में सूर्य चमकना थोड़ा थोड़ा, माना जो विदेश में दक्षिण भारत, भारत का विदेश है क्या, दक्षिण भारत, भारत का विदेश है, तो सन 76 से विदेश वालों ने, विदेशी लोगों ने जो भाषा भी नहीं जानते हिंदी, भगवान की भाषा भी नहीं जानते, भगवान किस भाषा में बोलता है, वो ढेर के ढेर आ रहे हैं पार्टियां बना बना के नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ही भगवान का जन्म का याद का स्थान यादगार बना हुआ है। राम के रूप में है तो भी यादगार कहाँ है, अयोध्या में। कृष्ण के रूप में है तो भी यादगार कहाँ है, नॉर्थ इंडिया में, मथुरा में। और शंकर के रूप में है तो भी कहाँ है, बनारसी में, काशी नगरी। तो भगवान तो है संसार सागर में, लेकिन नॉर्थ इंडिया में गुप्त है, अंधेरे में है या उजेले में है, हैं? अंधेरे में है। अभी कहाँ चमक रहा है, हैं? साउथ वालों को जितना जोश है उतना नॉर्थ वालों को जोश जोश नहीं। तो ऐसे ही है, सागर तो एक ही है। सतयुग त्रेता में सागर विशेष नहीं था, कैसा था, हैं? बैचलेस था। और जब से ये विदेशी आए हैं और धर्म आए हैं, तो उनके आने से कोई विशेष नहीं बन गया। कथा आती है मुसलमानों में, क्या एडम ईव को भगवान ने कहाँ भेजा, जन्नत में भेजा, और उनसे ये कह दिया कि ये बॉडी के बीच का फल नहीं खाना। अब बॉडी अंग्रेजी में शरीर को कहते हैं, शरीर के बीच में जो सुखरूपी फल मिलता है वो विकारी इंद्रियों से मिलता है, वो फल खाने के लिए मना कर दिया। भ्रष्ट इंद्रियां है ना, कि श्रेष्ठ इंद्रियां है, भ्रष्ट इंद्रियां है, तो भ्रष्ट इंद्रियों का फल खाने के लिए, सुखरूपी फल खाने के लिए मना कर दिया। अब वो फल मना कर दिया तो नहीं खाना चाहिए ना, है? लेकिन क्या हुआ, हाँ, वो मुसलमानों में कथा आती है कि ईव का मन ललचा गया और उसने एडम को प्रेरित किया, क्या एडम को, हाँ, प्रेरित किया कि इस दुनिया में आ जाओ। तो अब स्त्री जब प्रेरित करती है तो पुरुष का मन ललचाया जाता है ना, तो बोला ललचाया गया और क्या हुआ, फल खा लिया। किसने सबसे पहले खाया, ईव ने नहीं खाया, हैं?
तो कहने में तो ईव आता है कि ईव ने खाया पहले,
नहीं खाया नहीं। अरे पावरफुल जो है पुरुष होता है या स्त्री होती है, हैं?
पुरुष होता है।
तो पुरुष का मन ज्यादा चलायमान होगा कि स्त्री, स्त्री अपनी एक्ट में आ जाएगी,
पुरुष का, पुरुष,
हाँ पुरुष एक्ट में आ गया, पुरुष और स्त्री, पुरुष कहा जाता है आत्मा और स्त्री कही जाती है धरणी। तो चैतन्य कौन है, आत्मा। जब प्रकृति जड़ के प्रभाव में आती है तो आत्मा जो है वो संग के रंग में आ जाती है। तो संग के रंग में एडम आ गया और फिर चलायमान हो गया, तो सागर क्या बन गया, सागर ही वॉइसलेस था और द्वापर युग से इब्राहिम के आने से पहले ही सागर क्या बन गया, विशेष बन गया। ऐसे नहीं कि इब्राहिम आया तो विशेष बन गया, क्राइस्ट आए तो विशेष बन गया, बुद्ध आए तो विशेष बन गया, नहीं, उनके आने से पहले ही विशेष बन गया, देह का सुख में बिजी हो गया, आत्मिक सुख में देवताएं रहते थे, आत्मिक स्थिति में रहते थे, वो आत्मा का अतीन्द्रिय सुख गायब हो गया। नहीं समझ में आया है? सागर एक ही है लेकिन सागर जो है उस समय की सुई आती है तो ऑटोमेटिक आत्माओं में जो पार्ट भरा हुआ है 5000 वर्ष के ड्रामा का, वो एक्ट वैसी ही चलने लगे, जैसे रिकॉर्ड होता है ना, पहले पुराने जमाने में ऐसे ऐसे बड़े बड़े रिकॉर्ड होते थे ग्रामोफोन के, उनमें सुई चलती थी, सुई जैसे जैसे आगे समय की सुई बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो रिकॉर्ड बढ़ता जाता है। तो ऐसे ही है ये आत्मा रूपी रिकॉर्ड है, ये जितने भी बैठे हुए हम तुम क्या है, आत्मा रूपी रिकॉर्ड है। जैसे पहले बड़े बड़े रिकॉर्ड बनते थे तो उनमें एक गीत आता था, अभी छोटे छोटे जो है पेन ड्राइव चला है, वो छोटे से पेन नहीं नहीं उससे भी छोटा चिप चिप डालते हैं उसमें मोबाइल में, हाँ मेमोरी मेमोरी कार्ड, हाँ वो मेमोरी कार्ड में कितना भर जाता है, कितने इतने जीबी का उतने जीबी का बड़ा लंबा चौड़ा पार्ट उसमें भर जाता है। तो ऐसे ही ये आत्मा एक रिकॉर्ड है, इस आत्मा रूपी रिकॉर्ड में जितना ही हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते जाएंगे, जितना ही हम इसको सूक्ष्म बनाते जाएंगे, जितना ही सूक्ष्म बनाते जाएंगे, ज्योति बिंदु निराकार अणु अणियांश मनुस्मरित है, अणु से भी अणु बनाते जाएंगे, उतना इसमें पार्ट डिक्लेयर होता जाएगा।
जीवी पावर ही बढ़ेगी, आत्मा की जीवी पावर बढ़ेगी,
बढ़ेगी। अभी देह समझते हैं कि हम इतनी बड़ी देह हैं, हम मर जाएंगे तो हम तो कभी मरते, आत्मा कभी मरती है क्या? ये देह खलास होती है, देह के 5 तत्व तो खलास होते हैं, आत्मा तो फिर ये शरीर छोड़ के ये डब्बा छोड़ के दूसरा डब्बा धारण कर लेती है। तो आत्मा जो है उसकी जीव भी बढ़ जाती है क्या? अभी हमारी आत्मा में जितने जन्म डिक्लेयर हो रहे हैं ज्ञान के आधार पर, उतनी हमारी जीव भी समझो बढ़ रही है। कोई कोई तो कहते हैं हमें तो आत्मा याद ही नहीं आती, हमें बिंदी याद ही नहीं आती। अरे प्रैक्टिस करेंगे तभी याद आएगी ना, ज्यादातर कौन कहता है? बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती हैं या भाई लोग कहते हैं? माताएं ज्यादा ही कहती हैं। क्या हमें बिंदी याद ही नहीं आती? हमें साकार याद आता है, बिंदी याद ही नहीं आती। अरे
बाबा साकार को याद करें तो फिर बिंदी के मात्र
हेलो बड़ा रूप याद करेंगे। जैसे अभी तक 63 जन्म से देह याद आती रही तो हमारा कल्याण हुआ?
नहीं।
अब ये माता कहती है देह को याद करते रहे तो कैसा, इसका मतलब ये बिंदी याद ही नहीं आती। ये लो सैंपल निकला।
हाँ जब याद भी बैठते हैं
हाँ,
तो जैसे ही साकार में निराकार को याद करते हैं
हाँ,
जैसे ही निराकार में खोते हैं तो साकार भूल जाता है।
हाँ
जैसे ही
हाँ, तो प्रैक्टिस पक्की कर ली ना, प्रैक्टिस पक्की होगी तो क्या होगा?
साकार भूल जाएगा।
साकार भूल जाता है, निराकार रहता है।
साकार अगर भूल जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा?
तो विदेशी भी धर्मी बनेंगे।
माताएं जीत गई। बोला है कि साकार प्रेमी जो होते हैं, जिससे प्रेम होता है ना, वो जल्दी याद आ जाता है ना, नहीं हैं? जिससे ज्यादा प्रेम होता है वो बार बार याद आता है, जल्दी याद आता है। उसे भूलने की कोशिश करें तो भी
हाँ भूलना नहीं, भूलना अलग चीज हो गई। बार बार उसको याद करने में मतलब के निराकार को याद कर रहे हैं, साकार भी साकार में याद कर रहे हैं। अब ऐसा स्टेज आ जाती है कि सिर्फ निराकार ही दिखता है, साकार अदृश्य हो जाता है।
देखो गीत बनाए हुए जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। क्यों याद आते हैं? क्यों उनसे लगाव अटैचमेंट ज्यादा लगाया है। ज्यादा अटैचमेंट होने के कारण ज्यादा याद आता है। इसका मतलब जो व्यास वाली आत्मा रही होगी उसकी आत्मिक स्थिति सूक्ष्म स्टेज ज्यादा रही होगी। सबसे बड़ा ड्रामा बाज कौन है? सबसे बड़ा ड्रामा कौन बनाता है? व्यास बनाता है। इतना बड़ा ड्रामा कोई धर्म में कोई कवि नहीं बनाता। जैसे अंग्रेजों में शेक्सपियर बहुत ऊंचा कवि माना जाता है, लेकिन वो इतना बड़ा ड्रामा नहीं बनाता जितना बड़ा ड्रामा व्यास बनाता है। तो आत्मा जितनी सूक्ष्म स्टेज में याद आएगी और देह जितना ज्यादा भूलेगी उतना ज्यादा कल्याण ही कल्याण है या नहीं? लेकिन प्रकृति के बगैर, प्रकृति माना ये रंगमंच, ये सृष्टि रूपी प्रकृति जो है उसके बगैर कोई ड्रामा होगा ही नहीं। दोनों चाहिए, देह भी चाहिए और देह में रहने वाली आत्मा भी चाहिए, तभी पार्ट चलेगा, वरना पार्ट ही नहीं चलेगा। और
बाबा हमें अपनी आत्मा दिखाई तो देती नहीं है, फिर ऐसे
दिखाई नहीं देती? अच्छा, ओ डॉक्टरों के पास जाना, हमें मलेरिया का कीटाणु तो अपने शरीर में दिखाई नहीं देता। आप क्या बोलते हैं मलेरिया, मलेरिया के कीटाणु फैले हुए हैं आपके शरीर में? आप बिल्कुल झूठ बोलते हैं, हम नहीं मानेंगे। अरे ओ डॉक्टर के पास जाना, दस डॉक्टरों के पास जाना,
डॉक्टर की आत्मा
दिखाई। वो जिस जिस यंत्र से देखते हैं ना, एक बूंद खून के टीपे में वो जिस यंत्र से कीटाणु देखते हैं वो यंत्र आपको दिखाएंगे। तो ये तीसरी आंख जब आपको मिल जाएगी, प्रैक्टिस करके जब ये तीसरी आंख मिल जाएगी तो आपको आत्मा नजर आने लगेगी। आप प्रैक्टिस ही नहीं करते, आप प्रैक्टिस करते मेरा लल्ला मेरा लल्ला मेरा ये मेरा वो। अब उस प्रैक्टिस में रहेंगे तो देह ही याद आएगी ना, आत्मा कहाँ याद आएगी?
बाबा जी ने आत्माओं को आत्मा ज्यादा याद आती है बिंदी रूप में।
अपनी बात कर दो, मेरी
ज्यादा बिंदी याद आती है।
हाँ?
तो स्पष्ट बात है हमें ही ज्यादा बिंदी याद आती है।
हाँ?
तो मतलब क्या
है? इसका कारण ये है कि बाबा ने कहा है जो साकार को याद करने वाले प्रेमी हैं वो चरित्रवान होते हैं। क्या? साकार को याद करने वाले चरित्रवान होते हैं। और इसका उल्टा कर दूं, बाबा ने नहीं बोला
भ्रष्ट वाले बोले।
हाँ, दुष्चरित्र होते हैं। हाँ, उनसे जरा बच के रहना जी। फिर मुंह पे हाथ क्यों रख लिया? और हाँ
हैं? उन्हीं में बाबा कहते हैं आत्मा अभिमानी बनो, फिर उन्हीं में कहते हैं देही अभिमानी बनो, और उन्हीं में कहते हैं शरीर बनो।
देही का मतलब है अलग और देह का मतलब है अलग। एक मात्रा बढ़ाने से अर्थ बदल जाता है। क्या? जैसे बहुत से शब्द ऐसे हैं उनमें मात्रा बढ़ा दो, जैसे विष्णु उसमें ऊ की मात्रा बढ़ा दो विष्णु, क्या तो वैष्णव कहा जाता है। जैसे ब्राह्मण है, मात्रा बढ़ी हुई आ ब्रा, और मात्रा हटा दो तो उसका बाप बन जाएगा। ऐसे ही देह, देह और देह ही, तो इन दोनों में बड़ा किसको समझेंगे? देह को बड़ा समझेंगे। देह में एक मात्रा कम हो गई और देही में एक मात्रा बढ़ गई, तो देह जो है वो बड़ी हो गई और देही आत्मा छोटी हो गई। तो देही जो है वो कहते हैं शरीर में जो धारण करने वाली शक्ति है वो देह, देह ही हो गई। देह माना शरीर, और देही माने जो देह को धारण करे वो आत्मा। तो आपने देह और देही को एक ही समझ लिया, इसलिए ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं।
अशरीरी बनो,
अशरीरी आ माने नहीं, आ माने नहीं, शरीर माने सर, माना शरीर वाले मत बनो, देह वाले बुद्धि नहीं बने, आत्म की स्थिति वाली बुद्धि बने।
स्थिति में बिंदी याद आएगी,
आत्मिक का मतलब ही है बिंदी, आत्मा माने बिंदी। लोग नहीं जानते हैं, गीता में तो बताया हुआ है, अणुअणियांश मनुस्मृति है, जो जिसको स्मरण किया जाता है किस रूप में, अणु से भी अणु रूप में याद किया जाता है। लोग तो उस श्लोक के अर्थ को ध्यान ही नहीं दिया, शास्त्रों के विस्तार में चले गए, नहीं तो गीता मूल ग्रंथ है, गीता के सार को पकड़ना चाहिए। गीता में जब शब्द आ गया कि अणु से भी अणु रूप जो है वो जो या स्मरण की जाती है वो आत्मा है, कोई नहीं जानता दुनिया में कि आत्मा क्या है। अरे अपने धर्म ग्रंथ को ही भूल गए कि मुख्य धर्म ग्रंथ हमारा कौन सा है, हमारा धर्म पिता कौन है, उस धर्म ग्रंथ को सुनाने वाला कौन है, तो फिर याद कैसे रहेगा। उसने नाम लगा दिया गीता का भगवान कृष्ण, अरे कृष्ण तो साकार है, है? धर्मपिता है तो निराकार होते हैं, निराकारी स्टेज वाले, उनकी ध्यान से उनके चेहरे को देखो, क्राइस्ट को देखो कैसी आंखें हैं, देखने से ही चेहरा मालूम पड़ता है इनकी आत्मा यहाँ या नहीं है, नहीं ऊंची स्टेज में। क्राइस्ट को देखो क्या देखने में आता है, निराकारी स्टेज देखने में आती है, आत्मा एकदम साकार स्टेज से एकदम परे है। महात्मा बुद्ध को देखो कैसे दिखाई देते हैं, निराकारी स्टेज में। तो निराकारी स्टेज अलग बात और साकारी स्टेज अलग बात। अच्छा आज आपने ब्राह्मणों के बीच में ही देख लो, ब्रह्मा कुमारियों का धर्म पिता, ब्रह्मा कुमारियां कौन से पिता को मानती हैं, ब्रह्मा को। कोई भी चित्र उनके हजारों सैकड़ों लाखों चित्र निकल पड़े होंगे, है एक भी चित्र ऐसा नहीं जिसमें धर्म पिताओं जैसी निराकारी स्टेज हो। तो वो माता है या पिता है, धर्म पिता है, वो सनातन धर्म की माता है, पिता नहीं है, माता है, इसलिए साकारी स्टेज। अगर जो पिता होगा जो अभी गुप्त पार्ट बजा रहा है इस सृष्टि पर, तो वो क्योंकि कभी 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 साक्षात्कार होता है, अक्सर नहीं होता है, कभी कभी बहुत होता है, कभी कभी कम होता है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होते हैं कि नहीं, हमेशा और हरेक को होते हैं कि कभी कभी किसी किसी भक्त को होते हैं। तो अभी भक्ति मार्ग की शूटिंग चल रही है या ज्ञान सूर्य उदय हो गया है, है? भक्ति मार्ग की शूटिंग चल रही है, इसलिए कभी कभी तो प्रत्यक्ष हो जाता है और कभी कभी गुप्त हो जाता है। प्रत्यक्ष हो जाता है तो देखने में आता है कि निराकारी स्टेज है, नहीं प्रत्यक्ष हो जाता है तो नहीं देखने में आता है।
बाबा दिल्ली में झाड़ू वाली पार्टी ने, जनता पार्टी ने सिर्फ तीन छोड़े, बाकी सबका सफाया कर दिया, जो तीन कौन बचे ब्राह्मण दुनिया में।
झाड़ू पार्टी जो है, कौन सी देवी है जिसके हाथ में झाड़ू दिखाया जाता है,
जगदम्बा
महाकाली। नौवे नंबर की देवी है, नौ देवियों की पूजा होती है नौ दिन में, दशहरा आता है ना, तो नौवे दिन किसकी पूजा होती है, महाकाली की पूजा होती है। उसके बाद कौन सा उत्सव आता है, कौन सा त्योहार आता है, दीपावली। तो दीपावली से पहले घर में व्हाइट वॉश किया जाता है कि नहीं, झाड़ू लगाया जाता है ना अच्छे से, है? क्यों लगाया जाता है, कीड़े मकोड़े साथ बाहर हो जाए। तो ये सस्य रूपी मकान है, शशि रूपी मकान भगवान आकर के नया बना रहा है, अब क्या होने वाला है? झाड़ू लगने वाला है महाकाली के द्वारा। तो वो महाकाली तो ज्ञान मार्ग जब प्रत्यक्ष होगा तब झाड़ू लगेगा, उसकी प्रत्यक्षता जब होने वाली बिल्कुल नजदीक आ जाएगी तो आत्मा रूपी दीपक जब जल जाएंगे उससे थोड़ा पहले वो झाड़ू लगाएगी। लेकिन अभी भक्ति मार्ग चल रहा है जोर शोर कि ज्ञान मार्ग का जोर शोर चल रहा है? अभी भक्ति मार्ग का जोर शोर चल रहा है। तो भक्ति मार्ग के इस जोर शोर में वो भक्ति मार्ग वाली जो आप झाड़ू पार्टी है, वो झाड़ू पार्टी क्या कर रही है? तो झाड़ू दिखा रही है कि मैं आ गई हूँ। तो सब उसको सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? हैं? हाँ, क्योंकि उसकी सवारी मालूम है कौन है? हैं? केसरीवाल। केसरी किसको कहते हैं? केसरिया रंग। केसरिया रंग शब्द कहाँ से निकला? नहीं, शेर जो होता है ना उसके जो मुख पे बाल होते हैं ना वो केसरी बाल होते हैं, केसरी रंग के, उसे केसरिया कहते हैं, माने शेर। शेर उसकी सवारी है जगदम्बा की। बबर शेर या टाइगर? बबर शेर। तो नाम ही उसका केजरीवाल है। और
बाबा वो ना महादेव सीरियल देखा था तो उसमें बाबा ब्रह्मा और विष्णु जो
आपने पूरी बात तो कही नहीं थी, बीच में गपक लिया।
सीरियल देखा था।
अच्छा चलो गपको।
ब्रह्मा और विष्णु आते हैं तो धूल नहीं उड़ती, लेकिन महादेव आते हैं तो बहुत धूल उड़ती है बाबा। तो इसका क्या
है? वो विषपाई देवता है या नहीं? अरे विष पीता है कि नहीं? कैसे सर हिला दिया, कैसे विष पीता है? कोई गिलास में विष होता है सांप का, ऐसा करके पीता है? कैसे पीता है?
ग्लानी करती है सारी दुनिया।
अरे ग्लानी तो बाद में होती है, जब कोई बुरा काम करता है तब ग्लानी होती है बाद में, कि पहले ही ग्लानी होती है? हैं? हैं? बाद में ग्लानी होती है ना। पहले काम बुरा होता है कि ग्लानी पहले होती है? अच्छा काम होता है तो महिमा होती है बाद में, और बुरा काम होता है तो ग्लानी होती है। और विष किसे कहा जाता है? क्या बुरा काम है विष पीना? कहते हैं भक्ति मार्ग में समझते हैं शंकर जी ने विष पी लिया, बड़ा अच्छा काम किया जो किसी ने नहीं कर पाया, सो नहीं तो सब भस्म हो जाते विष की आग में। तो क्या बुरा काम किया? अरे या आपको पता ही नहीं है इसीलिए पूछ रहे हैं। पराई स्त्री या पर पुरुष के सेवन को विष कहा जाता है। क्या कहा? भगवान ने क्या किया? नाम तो रख दिया है, कृष्ण भगवान ने 16,000 गोपियां भगाई। क्या भगवान ऐसे काम करेगा? हैं? कृष्ण की बात नहीं है, भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो संग के रंग से सारी सृष्टि को सुधारते हैं। तो सारी सृष्टि की बीज रूप आत्मा है 4.5 लाख, और 4.5 लाख में भी 1 लाख आत्माएं बहुत श्रेष्ठ हैं। 1 लाख में भी 16,000 जो गोप गोपियां गाई गई हैं वो अति श्रेष्ठ हैं। वो अति श्रेष्ठ जो गोप गोपियां हैं वो 84 जन्मों में एक की ही पत्नी बनेंगी या अनेकों की पत्नी बनेंगी अलग अलग? हैं? एक की पत्नी बनेंगी। कोई आ जाए दुनिया में ऐसा?
21 जन्म के लिए
21 जनों के लिए 16,000 पत्नियां होंगी? अरे भगवान ने कहा है कि मैं श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ, एक नारी सदा ब्रह्मचारी बनाता हूँ। तो सतयुग त्रेता में एक नारी होगी 21 जन्म के लिए कि अनेक नारियां होंगी? दो दो बातें करते बुद्धि कैसी हो गई? हाँ एक ही होगी, हरेक आत्मा को एक ही सा। मुरली में देखो स्पष्ट बोल दिया, राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में, किसी दूसरे व्यक्ति में दृष्टि डूब ही नहीं सकती। आंखें भी इतनी श्रेष्ठाचारी, औरंगों की तो बात ही छोड़ दो। तो न सत्युग त्रेता में 16,000 किसी को होती है, न द्वापर कलयुग में किसी को 16,000 होती है, कहाँ होती है? संगम युग में। लेकिन गोपी होती है, गोपी का मतलब गोप माने गुप्त, गोपी माना गोपी माना क्या
गुप्त,
क्या गुप्त
गोपी।
अरे गुप्त क्या बहुत बोलता बहुत है,
संबंध बाबा है, गुप्त संबंध।
हाँ गुप्त संबंध, ऐसा गुप्त संबंध रखा हुआ है जो दुनिया वाले नहीं जानते हैं, इसलिए नहीं जानते हैं इसलिए ग्लानी करते हैं। अगर ये जान जाए ये संबंध जोड़ने वाला संबंधी कौन है तो फिर ग्लानी करना
बंद कर दे, सच्चाई सामने आ
जाएगी, सच्चाई सामने आ जाएगी। और नहीं समझ में आया है क्या? आपने क्या प्रश्न पूछा था, दोबारा पूछो।
ब्रह्मा विष्णु आते हैं तो धूल नहीं होती है।
तो धूल, धूल माने मिट्टी, ये देवान क्या है, देवान की मिट्टी है। तो ब्रह्मा ने जो पार्ट बजाया तो वो धूल नहीं उड़ती है, इस धूल से आंखें अंधी हो जाती हैं। जो संसार के मनुष्य हैं भगवान को भी गंदी दृष्टि से देखने लगते हैं, लेकिन वो गंदा है, गंदा पार्ट बजाता है, गंदा संग का रंग लगाता है। एक तरफ कहते हैं शंकर जी अमोघ वीर्य थे, अरे अमोघ वीर्य थे, उनका वीर ही निकलता नहीं था, उनका गंदा खून ही नहीं निकलता था। तो जब गंदा खून नहीं निकलता था तो गंदा करते हैं, गंदा करने की बात ही नहीं। तो जब ऐसा अमोघ वीर्य व्यक्ति एक तरफ कहते हैं दूसरी को तो कहते हैं विष पीता था, अरे विष का अर्थ ही नहीं जानते, धूल का अर्थ ही नहीं जानते। धूल माना देह अभिमान की धूल, पहले देवान आता है कि पहले काम विकार आता है, पहले देवान आता है। देवान के पीछे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सारे नंबरवार कूदते हैं। तो ब्रह्मा और विष्णु जब इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होते हैं, पार्ट बजाते हैं, तो धूल नहीं उड़ती है। और जब शंकर जी पार्ट बजाते हैं तो ये ग्लानी की धूल, देह अभिमान की धूल बहुत उड़ती है सारी दुनिया में। इतनी ग्लानी की धूल उड़ती है कि सारी दुनिया मुगालते में आ जाती है और शंकर जी को फॉलो करने लग पड़ती है। तो विनाश होगा या कल्याण होगा? विनाश के कगार पर पहुंच जाते हैं। और
बाबा तीन चार साल से सभी दुनियों का दुनिया
और दूसरों को हाथ नहीं उठाने, हाथ भी नहीं उठाने दोगे, हाथ भी नहीं उठाते,
हाथ उठाएंगे।
चार गुण है उसमें, चार गुण जो बताए हैं उसमें जो ईमानदार है वो सच्चाई को कहेंगे क्या?
चार पुर कहेंगे,
चार गुण बताए
गुण। हाँ हाँ,
उसमें जो ईमानदार है वो उसको सच्चाई को ईमानदार कहेंगे क्या?
सच्चाई तो सभी में गुणों में है, शिष्टाचारी है तो सच्चाई होगी तभी शिष्टाचारी बनेगा, नहीं तो शिष्टाचारी नहीं बनेगा। सच्चाई तो हर गुण में समाई हुई है। आज्ञाकारी सबसे पहले है, क्या आज्ञाकारी माना? जो भगवान बाप कहे, जो बापों का बाप परम पिता परमात्मा जो कहे उस आज्ञा को मानना ही मानना है, उस आज्ञा पर चलना ही चलना है, तो आज्ञाकारी कहा जाएगा। कोई भी आज्ञा का उल्लंघन करता है, या मान लो दस बातों को, दस बातों में से नौ बातों को मानता है और एक बात को नहीं मानता है,
आज्ञाकारी नहीं,
तो आज्ञाकारी
नहीं।
90% आज्ञाकारी है, 10% आज्ञाकारी नहीं, उसी लिस्ट में जाएगा। समझा नहीं समझा? बोलो बोलो बोलो।
ईमानदार का अर्थ क्या है?
हाँ, ईमानदार का भी अर्थ ऐसे ही है, ईमानदार नहीं, ईमान है या बेईमान है। किसी को आधा साझा में दुकान दी, भाई पैसा हम लगाते हैं, मैंने तुम्हारी, तुम दुकान पर बैठो और सौदा बेचो, जो प्रॉफिट हो वो आधा हमारा आधा तुम्हारा। उन्होंने लिया आधा तो क्या, सारा ही खा लिया, का घाटा आ गया। तो क्या है? बेईमान है या ईमानदार है? तो अभी अर्थ नहीं समझे ईमानदार का। मुसलमान कहते हैं कि मुसलमान अच्छा सच्चा वही है जिसका मुसलिम ईमान है। क्या है? मुसलमानों में पक्के और सच्चे मुसलमान पठान माने जाते थे। क्या? हाँ, और वो पठान खून ऐसा होता था कि बिल्कुल पक्का ईमानदार। तो सच्चे मुसलमान कौन हुए? पठान हुए।
कौन से ब्रह्मा को फॉलो करना
है?
तो बाबा बताते थे कि दादा लेखराज ब्रह्मा पाठधारी
को। ये तो बाबा ने नहीं बताया कि दादा लेखराज ब्रह्मा ही ब्रह्मा होता है और ब्रह्मा नाम ही नहीं होते हैं। आपने समझ लिया?
बाबा कहते थे ना कि उनमें सहनशीलता का गुण है।
पहला ब्रह्मा कौन है और 47 से ब्रह्मा कौन बना? पता कैसे चलता है कि इनमें बाप भगवान है? बोला है जब बाप आते हैं, बाप प्रवेश करते हैं, तब नाम रखते हैं ब्रह्मा। तो दादा लेखराज का नाम ब्रह्मा कब से पड़ा? हैं? 47 से। उससे पहले यज्ञ नहीं था, तब कौन प्रवेश करता था और किस में प्रवेश करता था? तो था ना। तो क्या हुआ?
नहीं, जैसे बाबा पहले वार्तालाप आते थे उसमें सहनशीलता के गुण को बाबा हाईलाइट करते थे ना कि ब्रह्मा पर आधारित है, लेकिन अभी जगराव में जो वार्तालाप चला उसमें बाबा ने कहा कि परम ब्रह्म के जो कर्म है उनको फॉलो करना है।
परम ब्रह्म ब्रह्मा प्रत्यक्ष है या परम ब्रह्म अभी प्रत्यक्ष है?
परम ब्रह्म
अभी प्रत्यक्ष है, कभी अनिश्चय नहीं आता। अनिश्चय आता है कि नहीं है?
आता है।
तो प्रत्यक्ष कहाँ है? जब प्रत्यक्ष ही नहीं है तो फॉलो किसको करेंगे? और ब्रह्मा तो प्रत्यक्ष पार्ट बजाया। एक भी ब्रह्मा कुमार कुमारी, अच्छा चलो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी कुमार, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कहलाने वाला ही क्यों न हो? जब ब्रह्मा कुमार था तो उसने कभी नहीं कहा होगा कि ब्रह्मा बाबा से हमको दुख पहुंचा, ब्रह्मा बाबा ने हमको टेढ़ी हिराकत की नजर से देखा। कोई कहेगा? आज कहता है? नहीं कहता। तो ब्रह्मा बाबा ने जितना सहनशीलता का पाठ बजाया, माता माता की तरह नाम ही है ब्रह्मा, ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ, ऐसा श्रेष्ठ पाठ सहनशीलता का तो माता की तरह और कोई ने बजाया ही। दुनिया में जितने भी संबंध होते हैं उन्हें सबसे जास्ती सहनशीलता का पाठ कौन सा संबंध बजाता है? माता का। और माताओं में भी सबसे बड़ी माता ब्रह्मा। तो नहीं बजाया है? ब्रह्मा में सहनशीलता का पाठ बजाने का मादा है प्रत्यक्ष रूप में, इसलिए ब्रह्मा को फॉलो करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मा तो इतना ज्ञानी नहीं था, बच्चा बुद्धि था। जब ज्ञानी ही नहीं था तो सहनशीलता की गहराई को जानता होगा?
नहीं जानता
है?
नहीं जानता।
जब गहराई को नहीं जानता तो ऊपर ऊपर की सहनशीलता या अंदरूनी सहनशीलता को भी फॉलो करता होगा? कहाँ तक खोल खोल के बताएं? इंद्रियजीत था?
नहीं था।
हेलो, सब नीचे झुका लिया। इंद्रियजीत शंकर है या ब्रह्मा है? जब इंद्रियजीत नहीं था और गोद में लेता था 16-18-20 साल की कन्याओं को, तो ढलकता होगा अंदर अंदर की नहीं है? अरे गलत या सही? सही बात। तो सहनशीलता जहाँ करनी चाहिए और जहाँ अति कठिन है सहनशील करना, सहन करना, वहां तो नहीं किया, छुपा लिया। भगवान की दृष्टि में भी छुप गया, छुपा नहीं, छुपाने की कोशिश की, और समाज की दृष्टि में भी छुप गया, और ब्रह्मा कुमार कुमारियों का जो संप्रदाय है, परिवार है, उसमें भी छुप गया। लेकिन वास्तव में इंद्रियों में सहनशीलता आई नहीं आई।
तो बड़ी माँ दे दिया, बड़ी माँ
घर में बड़ी माँ होती है कि बाप होता है?
बाप बड़ी माँ बोल दिया।
आप घर में बड़े हैं कि आपके साथ जो बाप घर का है वो बड़ा है? ब्रह्मा का पाठ दे दिया तो खराब दे दिया है? अंडर में रहना है या सरपरस्त होके चलना है परिवार का है? अंदर में रह के चलना है। तो ब्रह्मा है, बाप 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 है, बाप घर का मालिक होता है। अम्मा बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती है, टट्टी पेशाब पास कर साफ करती है, इतनी सहनशीलता, बच्चे को सूखे में सुलाती है, खुद उसकी पेशाब में लेट जाती है, सर्दियों में भी ऐसे ही करती है। इतनी सहनशीलता बाप धारण करेगा? नहीं करता। तो भी समाज में, शास्त्रों में जो माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है वो बच्चा माँ का कहा जाता है कि बाप का कहा जाता है? क्यों?
तो बाप भी डालता है, बाप भी डालता
है। बाप अगर सच्चा बाप है तो सच्चा बाप कौन होगा? सच्चा बाप वो है कि घर में आग लगे तो ऐसे नहीं खुद भाग जाए, बच्चा जल जाए। सच्चा बाप कौन है? जो बच्चे को संभाले, पहले निकाले आग में से और खुद अपनी परवाह न करे। जब यज्ञ के आदि में आग लगी थी धोबी घाट की, समाज में, सिंधी समाज में आग लगी थी ना, तो क्या किया ब्रह्मा ने? क्या किया? भाग गया। तो बच्चों की दुर्गति होगी हैं जलती हुई इस आग में, तो या सदगति होगी हैं?
दुर्गति
होगी,
दुर्गति
हो गई। कितने बच्चे ब्रह्मा की गोद में पले लेकिन सूर्यवंशी बाप की गोद से महरूम हो गए, क्योंकि बाप की लाश ही गुम कर दी। तो बाप के गोद में कहां से पलेंगे? अम्मा के बच्चे रह गए, बप्पा का नाम निशान गायब कर दिया, उसका सारा लिटरेचर ही गायब कर दिया, जमीन दोस्त कर दिया। हाँ
बाबा, क्या जन्म के साथ मृत्यु निश्चित है? तो अकाल मृत्यु क्या है? क्या अकाल मृत्यु भी निश्चित होती है?
बिल्कुल, किसी के पाप कर्म ज्यादा बढ़ जाते हैं जिस जन्म में, तो पाप कर्मों का बोझ ज्यादा ना बढ़ जाए इसलिए उसको अचानक मौत कर दी जाती है। ड्रामा में ऐसा नूद है, ये नियम बना हुआ है, पापों का बोझ ज्यादा ना पड़े तो अचानक मौत हो जाती है। इसका मतलब उसकी उम्र अभी बची हुई है, जो बची हुई उम्र है वो सूक्ष्म शरीर से वो आत्मा भोगती है बटक बटक के।
बहुत सूक्ष्म महसूस करती है,
तब तक वो
भूत
ही बनी रहती है, जब तक जन्म नहीं होता
तब तक शरीर नहीं मिलेगा।
बहुत सूक्ष्म आत्मा क्या महसूस करती है?
क्या महसूस करती है? क्या हल्कापन महसूस करती है? थोड़ा
नहीं, मतलब तड़पती तो नहीं?
तड़पती भी है,
मतलब जैसे घर पर ये या अपने साथी संबंधियों के लिए
लोगों में प्रवेश कर जाती हूँ आत्मा, जिसमें जैसे मेरे में प्रवेश करती है, तो मुझे तंग क्यों करती है?
दो तरह की आत्माएं, अच्छी भी होती है और खराब भी होती है। जिनके खराब संस्कार है वो तंग करती है, जिनके अच्छे संस्कार है वो तंग नहीं करेंगी। जैसे ब्रह्मा बाबा खराब संस्कारों वाली है, अच्छे संस्कार वाले, अच्छे संस्कार।
हमें बोलते हैं ट्रेटर करके, जीके थोड़े बोलते हैं कि ट्रेटर बोलो, कैसे हम
हैं?
ट्रेटर करके बोलते हैं,
ट्रेटर माने विरोधी, ग्लानी करने वाले।
बोले नहीं है, हमें छोड़ के यहाँ के आगे
अच्छा किया। आपको ट्रेटर क्यों कहा? क्यों कोई कारण होगा ना?
कुछ भी नहीं की।
अरे ऐसा तो होता ही नहीं,
नहीं
बहुत मदद करती थी सेंटर चला।
फिर आपको ट्रेटर क्यों करेंगी? हाँ मैंने ये कहिए ना कि आप इधर आ गए, इधर आने लगे, उनको पता चल गया, तब उन्होंने आपको कहा ट्रेटर। उन लोगों को ये समझाओ, आप हमें एक पॉइंट बता दीजिए, हम आपको 20 पॉइंट बताएंगे, हम ट्रेटर नहीं है बल्कि आप लोग ट्रेटर हैं। आप हमें एक पॉइंट बता दीजिए हम कैसे ट्रेटर हैं, आप साबित करके दिखाइए प्रूफ सहित, नहीं तो आप हमारे बाबा से चल के बात करिए। सिर्फ कहने से ट्रेटर हो जाता है? सिर्फ कहने से क्यों मान लेते? जो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं वो कभी कहने से कोई बात नहीं मानेंगे, हर बात का प्रूफ और प्रमाण मांगेंगे। बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान बाप के बच्चे कभी भी मानने के लिए कोई बात तैयार नहीं होते हैं। आप बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बनिए, आप हमें प्रूफ दीजिए, ऐसे नहीं मानेंगे। डर जाओ,
झगड़ा करते
हैं काहे का झगड़ा? बक बक मुख से करने से क्या फायदा? सुबह से लेके शाम तक बक बक करते रहो, झूठ का कोई असर होगा? झूठ का तो कोई असर नहीं होगा। हाँ
बाबा, 4 साल से जो भी दुनियावी धंधे हैं बिल्कुल ही गर्त में जा रहे हैं।
अच्छा, तो भी धंधा नहीं छोड़ रहे? ऐसी कौन सा चाट मसाला मिल रहा है? वो चाट मसाला तो बता दो, इतनी बातें तो सारी बता रहे हो, क्यों? ये चाट मसाला कौन सा मिल रहा है जो धंधा धोरी दुनिया के चौपट होते जा रहे हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे?
रोटी के लिए तो करनी पड़ेगी, रोटी के लिए करना होता।
माने भगवान बाप आपको मिला?
हाँ मिला।
बाप के घर में रोटी दाल नहीं मिल रही है? फिर क्या बात है, ऐसी फालतू बातें क्यों कर रहे? आपको घर से बाहर निकाल दिया क्या? फिर आप दुनिया वालों को दिखाना चाहते हैं, देखो हमें भगवान बाप नहीं मिला, हम सिर्फ मुख से कहते हैं कि हमारा बाप आ गया, भगवान बाप आ गया, लेकिन हम धंधा दोरी में फंसे हुए हैं। हम भगवान बाप का धंधा दोरी हम नहीं करेंगे,
वो भी करते हैं
और ये भी करते हैं, माने व्यभिचारी करते हैं या एक करते हैं? धंधा व्यभिचारी है, दोगला है या एक ही धंधा है? जो बाप का धंधा सो बच्चों का धंधा। वो चाट मसाला नहीं बताते क्या? चाट मसाला सर नीचे झुका लिया।
बाबा जो ये 4 गुण बताए
हैं,
जो 4 गुण बताए हैं होने चाहिए वफादार ईमानदार, ये गुण धारण करते हुए धीरे धीरे इनमें परफेक्शन आएगी? एकदम तो नहीं आएगी, धीरे धीरे आएगी।
अभी अभी पक्का कर लो, जरा निश्चय कर लो कि हम आत्मिक स्थिति में ही रहेंगे, हम रूहानी सोल्जर बनेंगे, हम रूहानी बाप के रूहानी बच्चे बनेंगे, देवानी नहीं बनेंगे। अभी वो गुण आ जाएंगे, एक सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे गायी हुई है? झटकू। लेकिन संसार में ऐसी परिस्थितियां चारों तरफ क्रिएट हो जाएंगी, क्या जब नाक तक पानी आ जाएगा तब मानेंगे। ओम शांति।